हम अपने विषय को जारी रखेंगे। पुराने नियम के परमेश्वर के जन जो नई वाचा के सिद्धांतों से जिए, जो हमारे लिए ही नहीं एक चुनौती की बात है, बल्कि जब हम देखते हैं हमारे आसपास इतने लोग जो नई वाचा को समझ गए हैं अपने दिमाग में, पर जो पुरानी वाचा के आदर्श से जीते, यही एक फर्क है। और हमें इससे एक पाठ सीखना है, और वो ये है, सत्य का ज्ञान इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसके अनुसार जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर उसका क्या अर्थ था? सत्य का सिर्फ दिमाग में ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान जो एक परिणाम को लाता है हमारे जीवन में, और अगर वो उस परिणाम को नहीं उत्पन्न कर रहा तो फिर वो उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर चाहता है हमारे पास हो। और आपको अपने आप से ये प्रश्न करना होगा, मेरे जीवन में पाप से छुटकारे का जो मात्रा है, क्योंकि यीशु उसी के विषय में यहां कह रहा था यूहन्ना 8वें अध्याय में, बत्तीस वचन यीशु कहता है, यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और फरीसिया कहते हैं, नहीं, स्वतंत्र का क्या अर्थ है, हम स्वतंत्र है, मैं कह रहा हूं पाप से स्वतंत्र होना। 34वां वचन, अगर तुम पाप करते हो तो वो पाप का दास है। तो फिर क्या चिन्ह है कि कोई सत्य को जान गया है? वो ये है कि वो पाप से छुटकारा पाता है। ये इतना स्पष्ट है यूहन्ना 8:32 में, अगर मैं पाप से छुटकारा नहीं पाता हूं तो मैं सत्य को नहीं जानता हूं, मैं जो जानता हूं वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। और मेरा डर है कि कई लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी किताबें पढ़ी है और इतने संदेशों को सुना है, उन्हें लगता है कि वो नई वाचा को समझ गए हैं। और इस वजह से मैं ये सत्र लेना चाहता था पुराने नियम के मनुष्यों के विषय में, जो ये सब नहीं समझा सकते थे 1% भी, जो आज हम लोग नई वाचा के विषय में समझा सकते हैं, या नई वाचा पुराने वाचा का फर्क बता सकते हैं, पर ये लोग फिर भी अपने ही लाभ की खोज करते हैं। आदम के बच्चों का सबसे मूलभूत समस्या यही है कि वो अपने लाभ को खोजते हैं, यीशु मसीह की चीजों को नहीं खोजते। सिर्फ इतना नहीं कि मैं अपने गुस्से पर जीत जाता हूं या दूसरे कोई आदत को छोड़ देता हूं, गहरे इन सारी बातों का जड़ हम अपने आप के लाभ को खोजते हैं, मसीह की बातों को नहीं खोजते। हम महिमा करते हैं अपने आप में और यीशु मसीह के क्रूस पर नहीं, जिसके द्वारा इस संसार हमारे लिए क्रूसित होता है। जब हम उदाहरणों को देखते हैं, इन मनुष्यों को जिनके विषय में हमने पहले ही देखा, हम देखते हैं कि वो ये बातें नहीं समझा सकते थे जैसे हम समझा सकते हैं, पर उनके पास वो जीवन था। और ऐसे कई लोग हैं इन सारे शताब्दियों में मसीह जगत में जो नई वाचा को नहीं समझा सकते जैसे आज हम समझा पाते हैं, हमें से कई लोग, पर वो जीवन जी चुके हैं और वो जीवन जी रहे हैं, और वो अंतिम परीक्षा है अगर हम सत्य जानते हैं या नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसको याद रखें जीवन भर। कभी ऐसा मत समझना कि आप सत्य को समझ गए हो अगर उसने आपको स्वतंत्र नहीं किया है पाप से, तो तुम सत्य को जानोगे और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32-36, उसको कृपया पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और देखिए यीशु क्या कह रहा था वहां। और इन बातों को याद रखते हुए हम एक और उदाहरण को देखेंगे पुरानी वाचा के पुस्तक, पुराने नियम के पुस्तकों से। हमने अय्यूब के उदाहरण को देखा, हमने अब्राहम के उदाहरण को देखा, मूसा के उदाहरण को देखा, ऐसे मनुष्य जो सचमुच ईश्वरीय जीवन जीते थे और जो नई वाचा के कई सिद्धांत समझ गए, जिनके विषय में हम बात करते हैं, उनकी कमियां उनकी खामियां थी, पर उनके पास कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जिनके वजह से वो नई वाचा के सिद्धांत से जी पाए उनके जीवन के कई क्षेत्र में। आज हम एलिशा के बारे में देखना चाहते हैं। एलिशा वो नबी था जो एलिया के बाद आया। पहला राजा उसके 19 अध्याय में एलिया वो भाग गया जब उसने स्वर्ग से अग्नि लाई उसके बाद, क्योंकि इजबेल ने उसको धमकी दी थी, और वो एक गुफा में छुप कर बैठता है और वो कहता है, प्रभु मेरे जीवन को ले ले, मैं बस थक गया हूं अब। वो उसका इतना सता हुआ था, ये बहुत आसान है कि हम उसका न्याय करते हैं क्यों वो एक स्त्री की वजह से निराश हो गया, पर वो इतने बड़े दबाव के नीचे था। उसने 450 बाल के नबियों को मारा था, उसके पास अंदर पवित्र आत्मा नहीं था जैसे हमारे पास है, इसलिए अपनी तुलना कभी एलिया के साथ न करें। और वो जाकर एक गुफा में अपने आप को छुपा लेता है और प्रभु उससे कहता है, ठीक है मैं तुझे ले लूंगा अपने साथ होने के लिए, पर मैं चाहता हूं कि तू जाके एलिया को अभिषेक कर कि वो तेरे बाद नबी बने। और इसलिए हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 19 वचन, वो वहां से निकल गया और उसको शपत का पुत्र एलिशा मिला जो 12 जोड़ी बैल के आगे और स्वयं 12वीं के साथ हल जोत रहा था। ये बहुत कठिन काम होगा, 12 जोड़ी बैल को जोतना, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। और एलिया उसके पास जाकर आपकी चद्दर उस पर डालता है, इसका अर्थ यह था कि मैं तुझे बुला रहा हूं मेरे पीछे आने के लिए। और एलिशा ही समझ गया, उसने सारी बैलों को वही छोड़ दिया, वो तुरंत भागा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। और एलिया ने उससे कहा, लौट जा, मैं तुझे जो चाहे तो करेगा। और इसलिए वो आकर एलिया के पीछे हो लिया, 21 वचन, और उसकी सेवा करने लगा। और मैं यहां क्या देखता हूं, प्रभु ने एक बहुत कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को चुना। अगर आप नई वाचा में, नई नियम में देखोगे तो आप पाओगे हर एक प्रेरित जिसको प्रभु ने चुना, उसके 12 शिष्यों में से हर एक, वो इस वजह से जिनके विषय में हम जानते हैं, वो जहां काम करते थे वहां चुने गए, वो मेहनत करने वाले व्यक्ति थे, मछुआरे, यूहन्ना, याकूब, पत्रस, एंड्रू, मछुआरे जो होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं जिनको मैं अपने जीवन में मिलाऊ। वो कई बार समुन्द्र पर, कई बार मैंने सुना है कुछ जगहों पे वो कई हफ्तों के लिए जाते हैं जब तक उनको मछलियां नहीं मिलती और वो घर नहीं आते। बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति रहते हैं क्योंकि उनकी पूरी आमदनी जो है वो मछली पकड़ने से मिलती है, और इसलिए उनको काम करता ही पड़ना जब तक उनको मछलियां नहीं मिलती पर्याप्त अपने परिवार को चलाने के लिए। और यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जो मेहनत करते थे। मत्ती, वो मेहनत कर रहा था, एक अकाउंटेंट वो था। मैं कभी नहीं देखता कोई भी व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने बुलाया जो ऐसे ही आलसी घर बैठा था बिना काम के, बिना नौकरी के। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुलाता, वो उनको बुलाता है जो विश्वास योग्य है उस काम में जहां वो कर रहा है। ये पहली बात है हमें देखनी है एलिशा के विषय में। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाइबल कॉलेज में गया डिग्री मिलने के लिए, पूर्णकाल सेवा में जाने के लिए, नहीं। ऐसे लोग जो हम आज देखते हैं वो परमेश्वर के सेवक नहीं है, उनको कहीं और नौकरी नहीं मिली और बाकी सारी चीजों में वो असफल हो गए स्कूल यूनिवर्सिटी में, और इसलिए वो बाइबल स्कूल में जाते हैं क्योंकि बाइबल स्कूल में आप रह सकते हो मुफ्त में और मुफ्त सीख सकते हो और मुफ्त जॉब मिलती है। और ये बहुत दुख की बात है कई देशों में आज। और इसलिए यीशु मसीह ने बाइबल बिल्कुल इसके खिलाफ है, बाइबल स्कूल के खिलाफ। आप पुराने नियम में पढ़ते हो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों का दल, शमूएल ने उसको शुरू किया क्योंकि उस समय में नबी नहीं होते थे, उसकी अच्छी मंशा थी शमूएल की। और बाइबल स्कूल के बच्चों लोगों को कहते थे नबियों का दल, पर उसमें से एक भी सच्चा नबी नहीं आया, सारे झूठे नबी वहां से आए उनके बाइबल स्कूल के डिग्री के साथ। और वो कहते थे मैं स्कूल ऑफ प्रॉफिट से आया हूं जो शमूएल ने शुरू किया था, और वे उस समय के झूठे भविष्यवक्ता थे आज जैसे ही। पर सही भविष्यवक्ता पुराने नियम में वो कभी किसी बाइबल स्कूल में नहीं गए, वो किसी स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में नहीं गए, वो मेहनत कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको बुलाया और एक अभिषेक किया। कैसा ही वैसे ही एक सच्चा सेवक परमेश्वर का, पुराने नियम या नए नियम या उसके बाद आज भी, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इन सारी लोगों से धोखा ना खाए जो काफी जानकारी है उनके पास, वो जो बाइबल स्कूल से उन्हें मिली है। या एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था एलिशा, यह पहली बात है जो हमें देखनी है। और जब उसको बुलाया गया उन्होंने छोड़ दिया, उसने इस वजह से नहीं काम छोड़ा क्योंकि उसको फुल टाइम वर्कर बना था, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे बनना है, नहीं, परमेश्वर नहीं बुलाएगा और आप सेवा करोगे तो आप असफल हो जाओगे। और 75% फुल टाइम लोग जो है वे ऐसे ही होते हैं, पूरी तरीके से असफल, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया ही नहीं। एलिशा को बुलाया गया, उसकी बुलाहट थी और हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप नहीं बुलाए जाते फुल टाइम काम में तो आप जाओ वही काम करें और पूर्ण हृदय परमेश्वर के सेवक बने, आप वहां ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं परमेश्वर के लिए। पर पौलुस एक काम करने वाला व्यक्ति था, पौलुस एक मसीह व्यापारी था जो प्रेरित भी था, वो अपने आप के आधारित करता था, किसी पर भी पैसे के लिए वो रुकता नहीं था, अगर कोई गिफ्ट देता था वो लेता था, पर उन पर वो निर्भर नहीं था। और वो सबसे बेहतर बात है हमारे दिन में परमेश्वर की सेवकाई करने की, हम अपने आप को पैसे कमाए किसी और पर निर्भर ना रहे और परमेश्वर की सेवकाई करें। और हम यहां देखते एक अद्भुत उदाहरण एलिशा का, मेहनत करने वाला व्यक्ति, नए नियम में जैसे हम यीशु मसीह के शिष्यों को देखते हैं, यह पहली बात हम एलिशा के विषय में देखते हैं। फिर हम आगे जाते हैं, एक ऐसा समय जहां एलिया जाने वाला था, परमेश्वर उसको ले जाने वाला था एक अग्नि के रथ में, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, और इस व्यक्ति के विषय में कुछ और आप पढ़ते हो, नई वाचा के सिद्धांत। फिर एक बार ऐसा लिखा है, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, एक ऐसा समय है एलिया के बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। यहां एलिया उस व्यक्ति को बताया जिसको उसने बुलाया था, जिसके पर चादर डाली थी। दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा वचन, एलिया एलिशा से कहता है, तू यही रुक जा, यही ठहरा रहे, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतल तक भेजा है। वो कहां थे? वो गिलगाल में थे। पहला वचन, एलिया एलिशा के साथ गए और वो दोनों संग संग गिलगाल में थे। वो शुरुआत गिलगाल में कर रहे हैं और एलिया ने एलिशा से कहा, तुम यही रह जा, ठहर जा, मैं जा रहा हूं। वो एक परीक्षा थी, क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं तीन बार एलिया ने एलिशा को कहा तू यही ठहर, वो कहा नहीं 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 मैं आऊंगा, मैं तेरे साथ आगे आऊंगा। और उसके बाद आखिरी में शुरुआत हुई गिलगाल में, फिर वो बेथेल में गया दूसरा वचन, फिर वहां से लेकर यरीहो चौथा वचन, और फिर वो यारदन में छठे वचन में, ये चार जगह थे। हर बार एलिया ने एलिशा से कहा तू यहां ठहर जा, गिलगाल में रुक जा, एलिया ने कहा नहीं, एलिशा ने कहा नहीं। फिर एलिया कहता है जब वो बेथेल में आए, एलिया ने उसको कहा तू यही रुक जा बेथेल में, एलिशा ने कहा नहीं। फिर जब वो यरीहो में आते हैं, फिर एक बार एलिया कहता है तू यही ठहर जा, वो कहता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा। आप इनको पहले कुछ वचनों में पढ़ते हैं, हम इससे क्या सीखते हैं? आखिरकार जब एलिया और एलिशा उस यरदन नदी को पार करते हैं, एलिया ने एलिशा से पूछा, ठीक है क्यों तू मेरे पीछे आ रहा है, तू क्या चाहता है? और एलिशा, मैं उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है क्यों मैं तुम्हारे पीछे इतने समय से आ रहा हूं? तुमको लगता है मुझे तुम्हारे जैसे मुझे कोई शीर्षक चाहिए, डायरेक्टर या सबसे बड़ा एल्डर इस कलीसिया का? मैं तुम्हारे बाद रहने वाला हूं, तुम इतने दिन एल्डर थे, अब मैं उत्तराधिकारी हूं, अब सबको बताओ मैं नया एल्डर हूं। वो ऐसे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रखता। आज मसीह लोग टाइटल्स में इंटरेस्टेड है, शीर्षक, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, चेयरमैन, एल्डर। एलिशा ऐसे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं था, एक ही बात में उसकी दिलचस्पी थी। और मैं चाहता हूं सारे मसीह भी एक ही बात में दिलचस्पी रखें, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक। सारे शीर्षक कोई काम के नहीं अगर आप पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं हो तो। हम जानते हैं कि हम एक एल्डर है, अच्छा बड़ा व्यक्ति चर्च में, आपको लगता है आप ज्यादा आत्मिक हो दूसरों से, आपको सबका सेवक होना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, मैंने कई कलीसियाओं को देखा है जहां कलीसिया के लोग एल्डर से ज्यादा अभिषिक्त होते हैं। यहां लिखा है एलिशा ने कहा एलिया से, मैं सिर्फ आत्मा वो नहीं चाहता अभिषेक जो तेरे पास था, मैं उस आत्मा का दुगना भाग चाहता हूं। इंग्लिश में लिखा है अभिषेक का दुगना भाग चाहता हूं। वो बहुत ढाढ़स था मांगने में, वो उसकी प्यास करता था, क्यों मैं तेरे पीछे आ रहा हूं? और अगर तू आप देखोगे चमत्कार जो एलिशा ने किया, उसने दुगने चमत्कार किए जितने एलिया ने किए, आप गिनकर देखिए। उसको जो चाहता था वो मिल गया, वो अभिषेक प्राप्त किया अलौकिक सामर्थ्य स्वर्ग से, क्योंकि वो उसकी प्यास रखता था। ये पहली जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा है उसको मेरे पास आने दो, और अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। पहली बात, पहली जरूरत, सिर्फ दिमाग में समझ नहीं, डॉक्ट्रिन की समझ नहीं। हाँ, उसने कभी डॉक्ट्रिन की समझ के विषय में नहीं कहा। आज हमारे पास इतनी किताबें हैं पवित्र आत्मा से भरने के, डॉक्ट्रिनल समझ है, पर बहुत कम लोग हैं जो असलियत में पवित्र आत्मा से भरपूर है, क्योंकि उनके पास प्यास नहीं है। यहां देखिए, हम वापस जाकर देखेंगे गिलगाल में। गिलगाल वो जगह है, अगर आप यहोशू के पुस्तक में पढ़ो पांचवा अध्याय, मिस्र देश की निंदा वहां निकल दी खतना करने से, खतना कर दी और मिस्र की निंदा अब निकल गई है। वो पहली जगह है जहां हम शुरुआत करते हैं, जहां हमारे पापों की क्षमा होती है, हमारे पिछला जीवन पूरा पोंछ दिया जाता है और हम वहां आते हैं। क्या आप खुश हो वहीं रहने के लिए? एलिया एलिशा से कहता तो गिलगाल आ गया है, निंदा चले गई, तेरे पाप क्षमा हो गए, तो अब स्वर्ग जा रहा है, यहीं रुक जा। कई लोग कहते हैं धन्यवाद भाई, धन्यवाद मुझे, मैं अब आश्वासन मिल गया कि मैं मरने के बाद परमेश्वर का राज्य में निकल, बस हो गया, वो जीवन भर गिलगाल में जीते। क्या ऐसे लोग पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होंगे? कभी नहीं। फिर वो आगे बेथल में जाते हैं, ऐसे लोग जो एक कदम आगे चल गए। बेथल वो जगह परमेश्वर का भर घर उसका अर्थ है। वही याकूब ने वो सीढ़ी देखी जो स्वर्ग की ओर जाते हैं और उसको बेथल नाम रखा उस जगह का। ये ऐसे लोग हैं जो पापों की क्षमा के आगे गए हैं और एक नई वाचा की कलीसिया में वो आ गए हैं। ये अद्भुत है। हम सिर्फ उन दूसरे लोगों ने ऐसे नहीं जो डिनोमिनेशन उनके सिर्फ पाप क्षमा हो गए और वो वैसे जीते, नहीं, हम एक नई वाचा की कलीसिया हमने देखी है क्या, और लोग उससे में महिमा करते हैं। हम किस चर्च में है और उनके पास जीवन खुद नहीं है, वो अभिषेक नहीं जानते, पर वो एक अच्छे कलीसिया में है, अच्छा कलीसिया, अच्छे एल्डर्स और अभिषेक तागुए और नई वाचा की कलीसिया। बेथल ये परमेश्वर का घर है, ये एक मरा हुआ डिनोमिनेशन नहीं है, ये परमेश्वर का घर है बेथल। परमेश्वर की स्तुति हो कि आप गिलगाल से आगे गए बेथल तक। और एलिया कहता है तो यहां ठहर जा, वो कहता है नहीं, मैं खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, पापों की क्षमा से नहीं मैं तृप्त नहीं हूं कि मैं एक नई वाचा की कलीसिया का भाग हूं। एलिया कहता है मैं आगे यरीहो को जाने वाला हूं, और यरीहो का क्या अर्थ है आप जानते हो, यरीहो वो जगह थी जहां परमेश्वर की सामर्थ देखी गई और उन्होंने जब वो तुतारी फूकी तो वो दीवारें गिर गई। और ये दूसरी बात है, कई लोग वो परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हैं कोई अलौकिक तरीके से उनके जीवन में और वो उसी से तृप्त हो जाते हैं। शायद उनको सचमुच एक दान मिला अन्य भाषा का, 95% मैंने सुना अन्य भाषा वो झूठी है, पर एक असली दान भी है और कुछ लोगों को वो मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने प्राइवेट प्रेयर में उसका इस्तेमाल करता हूं, पर कुछ लोग उसी से तृप्त है, एक अलौकिक अनुभव या उन्हें कोई अलौकिक चंगाई मिल गई और वो जीवन भर उसी के विषय में बात करते रहते हैं, पर उनके पास अभिषेक नहीं है, उन्होंने सिर्फ कोई अनुभव किया है परमेश्वर के सामर्थ का। क्या आप जानते हो इसराइल के लोग, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ का एक बार नहीं, हर दिन 40 वर्षों तक परमेश्वर के सामर्थ को देखा। स्वर्ग से खाना नीचे आया हर दिन, उस मरुभूमि में एक चट्टान से उन्हें पानी मिला, जब सांप उनको काटते थे अलौकिक तौर पर उनको चंगाई मिली, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूतियां नहीं फटी, उनके पास एक गवाही थी जो वो हमेशा कह सकते थे और वो सत्य थे। पर ऐसा लिखा है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर उनसे किसी से भी प्रसन्न नहीं था। आप उसको पहला कुरिन्थी 10 में पढ़ते हो, आप इब्रानियों में 3 अध्याय में भी हम इसको पढ़ते हैं। गिलगाल अच्छी बात है, बेथल अच्छी बात है, यरीहो परमेश्वर का सामर्थ अच्छी बात है, पर नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, ये अभिषेक नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर की अच्छाई की कुछ ये है। और इसलिए एलिया कहता है तू यरीहो में रहे, तू इसी से खुश है क्या, तुझे क्षमा मिल गई, तू नई वाचा की कलीसिया देखी, तूने अलौकिक प्रार्थना के उत्तर देखे, क्या तू खुश है? एलिशा कहता है नहीं। एलिया कहता है मैं यर्दन को जा रहा हूं, एलिशा कहता है ठीक है मैं तेरे पीछे आऊंगा। और यर्दन का अर्थ है अपने आप को मरना। अपने आप को कहां मरते हैं? पहले नहीं, देखिए कैसे कैसे ये स्टेजेस थे, गिलगाल पापों की क्षमा और हमारा बीता हुआ काल पहुंच गया, हमारी निंदा चली जाती है बीते हुए जीवन की, बेथल नई वाचा की कलीसिया, यरीहो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में अनुभव करना, फिर भी वो तृप्त नहीं था। मैं चाहता हूं काश आज ऐसे लोग होते, ज्यादा लोग जो ये सब अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं तृप्त नहीं हूं, मैं आगे जाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो मैं क्रूस लेकर हर दिन और मेरे पीछे आओ, मैं उस जीवन तक आना चाहता हूं जिसके विषय में लिखा है इब्रानियों 10:20 नया और जीवित मार्ग। उस देह के द्वारा वो मार्ग है जहां यीशु मसीह खुद गया उसके देह के द्वारा, और वो क्रूस का मार्ग है। और यार्दन वो जगह थी जहां यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा, उसका अर्थ था मैं अपने आप को मरने के लिए तैयार हूं, दूसरे लोग मुझे नीचे डालते हैं, मुझे मारते हैं, अंदरूनी वो वैसे ही जिया 33 साल के लिए, जब तक वो क्रूस पर नहीं टंगा, अपने आप के लिए मरना हर दिन। नहीं तो वो हमें नहीं कह सकता था कि हम क्रूस हर दिन लेकर, अगर वो खुद हर दिन क्रूस नहीं लेकर चलता। वो ये नहीं कह रहा मैं क्रूस एक ही दिन लेने वाला हूं मरते समय, पर तुम्हें रोज लेना है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो, अगर तुम वैसे ही चलना चाहते हो जैसे मैं चलता हूं, तो तुम्हें हर दिन क्रूस लेना है, क्योंकि मैं वैसे ही चलता हूं। वो हमें यह बता रहा था लूक 9:23 में कि उस प्रकार वो चला जीवन भर। और यद्यपि एलिशा इन सारी बातों को नहीं समझा, वो इस जाता था। और यर्दन का वो अर्थ है अपने आप को मरना। यीशु मसीह ने कहा मैं समर्पित करता हूं यूहन्ना बपतिस्मा को कि वो मुझे पानी के नीचे गाड़ दे। और प्रतीकात्मक रीति से वो कह रहा है लोग मुझे कुछ भी करे चलेगा, मेरा पिता मुझे वापस उठाएगा। जहां कहीं हम अपने आप के लिए मरने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें उठाता है और पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। और यर्दन का यही अर्थ है क्रूस को समर्पित होना, और उतना ही नहीं पर उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य का अनुभव करना। वो है पवित्र आत्मा का सच्चा अभिषेक, वो है सच्चा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य। और वो एक ही बार में नहीं आता। पौलुस ने उसके जीवन के अंत में कहा जब वो 60 वर्ष का था, फिलिपियों के पत्री में, मैं ज्यादा जानना चाहता हूं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को। और वही हम यहां देखते हैं। और फिर एलिशा कहता है 9वें वचन में, मैं क्यों तेरे पीछे आया हूं, मुझे एक दुगना अभिषेक दे तेरी आत्मा का। और एलिया क्या कहता है, वो कहता है तूने कठिन बात मांगी है। 10वचन, आज आप किसी प्रचारक के पास जाए जो इस पर विश्वास करते हैं और उसे कहे भाई मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता हूं, वो कहेगा हाँ यहां मैं अपने हाथ उस पर रखता हूं तुझे अभिषेक हो जाएगा। ये एक आसान बात है? बिल्कुल नहीं। आपको कुछ नहीं मिलता, वो उसके खाली हाथ आपके सिर पर रखता है, आपको क्या मिलता है? शून्य। आपको जरूरत है यीशु मसीह के खिले ठोके हुए हाथ जो आपके सिरों पर रखे जाए, उस प्रचारक के खाली हाथ नहीं आपके सिरों पर। आपको उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो एक आसान बात नहीं है। एलिया ने कहा यह कठिन बात है। मैं चाहता हूं ज्यादा लोग ये कहते दूसरे लोगों को जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते थे। 10वचन, दूसरा राजा 2, तुमने कठिन बात मांगी है, पर अगर तुम मुझे देखो जब मैं ऊपर ले लिया जाऊंगा तो तुम्हें वो मिल जाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यहां एलिया एक चित्र है यीशु मसीह जो स्वर्ग में लेके गया, और एलिशा शिष्यों का चित्र है जो उसको देख रहे ऊपर जाते हुए, तुम और आप और मैं। प्रभु यहां यह कह रहा है प्रतीकात्मक भाषा में, अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारे पास अभिषेक होगा, पर अगर आप सेवकाई के साथ व्यस्त हो या टाइटल्स के साथ व्यस्त हो या दूसरी बात इस पृथ्वी पर, तो तुम्हारे पास वो अभिषेक नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है वो भी खो दोगे। वो पहली बात है जो हमें देखना है एलिशा के उदाहरण से, एक बहुत बड़ी गवाही, अभिषेक के पीछे खोजना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खोजना और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना। प्रभु मैं ये चाहता हूं किसी भी कीमत पर। हम आगे जाते हैं, एक और बात जो हम सीखते हैं एलिशा से अगले अध्याय में, दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय, आहाब राजा और यहोशापात राजा, वो एक साथ योजना बना रहे थे लड़ाई की, और इतने झूठे भविष्यद्वक्ता जो बाइबल स्कूल से आए थे वो सारी झूठी बातें कह रहे थे। और यहोशापात के पास परख थी क्योंकि झूठे भविष्यवाण वक्ताओं ने कहा, नबियों ने, हाँ 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 इन लोगों को परमेश्वर आपके हाथ में देगा। यहोशापात ने यह सब सुनकर कहा यह मुझे सच नहीं लगता। और वो दूसरा राजा 3:11 में कहता है क्या यहां सच्चा नबी नहीं है? और जैसे हमने इन सारे प्रचारकों को सुना है, क्या सही नबी है क्या यहां सच्चा नबी? और इसराइल के राजा के एक कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हां एलिशा वो इकलौता सच्चा नबी है, और वो व्यक्ति है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। देखिए उसका शीर्षक क्या था, वो डॉक्टर एलिया एलिशा नहीं था, रेवरेंट एलिशा नहीं था, आर्च बिशप एलिशा नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति जो एलिया के हाथ पर पानी धोया करता था, एलिया का सेवक। हाथ पानी डालना मतलब जब खाना हो जाता था एलिया का, एलिशा थोड़ा पानी लाता था और उसके हाथ पर डालता था धोने के लिए, वो उसका टाइटल है, उसकी बुलाट वो थी, हाथों को धुलाने वाला एलिया जो नबी था उसके लिए। क्या अद्भुत है, सोचकर देखिए कि हम ऐसे जाने जाते। और ये नहीं कि वो इकलौती बात उसने की, क्योंकि पिछले अध्याय में हम पढ़ते हैं उसने यर्दन नदी को दो भाग में कर दिया, जब वो एलिया की चादर को लेकर उस पानी पर मारता है। दूसरा राजा 2:14 में हम पढ़ते हैं, और वो यर्दन नदी दो भाग हो गई और वो उधर से निकल कर आया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब पानी अशुद्ध था, बुरा था, 19 वचन में दूसरा राजा 2 अध्याय, उसने प्रार्थना की और उसमें कुछ नमक डाला और प्रार्थना शुद्ध हो गया, उसने ऐसे चमत्कार देखे थे। और इन सारी बातों के विषय में उन्होंने नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा जिसने ऐसा व्यक्ति जो यर्दन नदी को दुभागा जब एलिया जाने के बाद, ये वो व्यक्ति है जिसने पानी को शुद्ध किया सिर्फ उस पर प्रार्थना करके नमक डालकर, नहीं, उसको क्या कहा, यह वो व्यक्ति है जो एलिया के हाथ धुलाया करता था। यह अद्भुत है, सारे चमत्कार करने के बाद, मेरे भाई और बहनों, लोग हमें एक सेवक के हिसाब से जाने, एक मूलभूत बात जिसके विषय में आप जाने जाते हो, वो नहीं कि आपने चमत्कार किए, पर आपके पास एक सेवक की आत्मा है जहां हम सब उसके पीछे अगुवाई पीछे चल सकते हैं। हम सब चमत्कार करने के लिए नहीं बोला है, पर हम एलिया के पीछे चल सकते हैं, एलिशा के पीछे। और हम पढ़ते हैं कि एलिशा ने सच कहा। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप देखें एलिशा के विषय में, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, वो एक नगर से होकर जाता था। दूसरा राजा 4 अध्याय, वो शूनेम से होकर जाता था, 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4:8, और वहां एक स्त्री थी जाने मानी, शायद अच्छा पैसे थे उसके पास, और वो उसको कहती थी कि तू आकर हमारे साथ खाना खा। और जब कभी वो जाता था वो रुकता था और वहां खाना खाता था। और उसने उसके पति से कहा हम इसके लिए एक छोटा कमरा बनाए और वहां एक कोठरी बनाए, एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी रखे, जब कभी वो आए वो वहां रह सके। 10वां वचन, और वो वहां आया, यहां कुछ अद्भुत नहीं, वो प्रचार नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, पर वो आया और खाना करता खाता था उनके साथ, और वो जाकर सोता था उस कमरे में और वो आगे चले जाता था, वो सिर्फ वहां से होकर गुजर रहा था। और क्या आप जानते हो क्या छवि मिली इस व्यक्ति को, सिर्फ उसको देखकर, कोई चमत्कार नहीं, उसने कुछ चमत्कार नहीं देखे थे एलिशा से, उसने सिर्फ देखा वो कैसे अपने बर्ताव था घर में, कैसे वो खाना खाता था, और कैसे वो चुपचाप अपने कमरे में जाता था और शायद अपने कमरे को साफ सुथरा रखता था। और वो कहती है अपने पति से, मैं देखता हूं कि एक परमेश्वर का पवित्र भक्त है जो यहां से जा रहा है, और इसलिए उसने वो छोटी कमरा बनाया। देखिए, हम जो छवि एलिशा ने दी लोगों को, सिर्फ जैसे वो खाना खाता था, और आप पढ़ो उसने दूसरा कुछ नहीं किया था, सिर्फ किस प्रकार वो अपने आप का बर्ताव करता था, कैसे वो खाता था, और शायद उसकी बातचीत, उनसे कैसे वो बात करता था, उसने एक ऐसी छवि बनाई कि वो पवित्र व्यक्ति था। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे लिए। आज हमारे पास इतने लोग हैं जो नई वाचा के विषय में घमंड करते हैं, अगर आप उनके साथ बैठो और उनके साथ खाना खाओ और वो हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और आपको कभी ऐसा नहीं छवि मिलते कि ये एक पवित्र व्यक्ति, आपको लगता है कि ये जोकर है जो एक ऐसा छवि छोड़ना चाहता है कि वो बहुत हंसाता है। कई लोगों को ऐसी छवि बनानी है कि मैं लोगों को हंसा सकता हूं, और लोग आप जाने माने हो क्योंकि आप लोगों को हंसाते हो, और बाकी विश्वासियों के पास ऐसी क्षमता नहीं है, उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता पर ये भाई ये कर सकता है। अच्छा, क्या आप पवित्र व्यक्ति जाने जाओगे? अगर आप जोकर नहीं जाने जाओगे पर एक पवित्र व्यक्ति के तौर पर जाने जाओ, एक पवित्र व्यक्ति परमेश्वर का, वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। एलिया को जोकर नहीं कहा गया, एलिशा को, उसके पास शायद वो जोक नहीं कर सकता था कई लोगों जैसे, और जो एक लोगों में जाना माना चाहते हैं उसको इच्छा थी कि पवित्र जाना जाए, उसकी बातचीत पवित्रता के विषय में, वो जोक्स नहीं कह रहा था, वो लोग परमेश्वर को, लोगों को भक्तिमय में चला रहा था। ये एक नई वाचा का व्यक्ति है पुराने नियम में, और उसकी तुलना करके देखें इन सब लोगों से जो नई वाचा को जानते हैं आज, वो कहां है और आज के लोग कहां है। और मैं आशा करता हूं कि आप देख सकते हो, याद रखिए मैंने पहले सत्र में कहा था, यीशु मसीह ने कहा आप सब अपनी तुलना करते हो निनवे के लोगों से तुलना कर, अपनी तुलना दक्षिण की रानी से करें, अपनी तुलना पुराने नियम के लोगों से करें जिन्होंने मन फिराया और पीछे मुड़ गए। और वही मैं कहता हूं इन लोगों के पास देखें। हम उससे आगे जाते हैं और परमेश्वर ने वहां एक चमत्कार किया स्त्री के लिए, और उसे एक बेटा दिया। वो तब तक कोई उसके पास बच्चे नहीं थे और उसको एक बेटा मिल गया और एक दिन वो बेटा मर गया। और हम देखते हैं यहां वो जाती है एलिशा से मिलने, उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया जब वो बच्चा मर गया, मरा हुआ उस बिस्तर पर, और वो एक गधे पर बैठी। दूसरा राजा 4:22, और वो तुरंत गई क्योंकि मैं एलिशा को मिलना चाहती हूं। और 25 पे उसने एलिशा को देखा और एलिशा ने देखा कि यह तो शूनेमैन है, जाके पूछे वो क्या क्या हो गया। और उसने आकर कहा, पहले उसने कहा सब कुशल है, लड़का भी कुशल है। और फिर एलिशा कहता है शायद कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया नहीं, 27 वचन। और फिर वो बताने लगती है कैसे वो लड़का मर गया। और फिर मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, एलिशा ने गेहजी से कहा, दूसरा राजा 4:29, मेरी छड़ी हाथ में लेकर जा, तू मेरे से जल्दी भाग सकता है, आगे भाग के जाना और किसी को मिलना नहीं, किसी को कुछ कुशल पूछना नहीं, और जाकर मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। और लड़के की मां ने कहा मैं गेहजी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं जानता हूं गेहजी कैसा और मैं जानता हूं तू कैसे जा, तुम दोनों मेरे यहां खाना खाते हो, मेरे साथ खाना खाते हो, ये व्यक्ति सिर्फ जोकर है, पर तुम अलग हो, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें एलिशा, वो जा सकता है अगर वो चाहे तो। और इसलिए एलिशा भी उठकर, पहले एलिशा सिर्फ अपने सेवक को भेजना चाहता था, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। गेहजी आगे जाता है और वो छड़ी लेकर जाता है 31 वचन, जैसे एलिशा ने उसको कहा था, और उसके मुंह पर रखा, लड़के के मुंह पर, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इसलिए वो वापस आकर कहता है कुछ नहीं हुआ। ये मुझे याद दिलाता है आज ऐसे लोगों का जो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सुना दूसरे लोगों ने कुछ अद्भुत किया यीशु के नाम से, कोई चमत्कार किया, और वो लेकर जाते हैं और यीशु मसीह का नाम वो छड़ी है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं होता भाई, शब्दों में ये सब नहीं होता। शब्दों का इस्तेमाल करना है वो गेहजी के जैसे, जो वो छड़ी रखता है किसी पर और प्रार्थना करता है कि कुछ होगा, पर आपका जीवन सही नहीं है और आप पवित्र व्यक्ति नहीं हो और आपके प्रार्थना नहीं होते। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभावशाली है, हम याकूब 5 में पढ़ते हैं 17 वचन से आगे, प्रभावशाली प्रार्थना एक धर्मी व्यक्ति की। गेहजी वही नाम इस्तेमाल कर सकता है, एलिशा की छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ नहीं होता है। फिर एलिशा को खुद आना पड़ता है और फिर वो अंदर जाता है और यहोवा के सामने प्रार्थना करता है और आगे जाकर मुंह उसका मुंह आग आग पर रखता है और हाथ हाथों पर और अपने आप को उस पर गर्म होने के लिए पसर देता है और बच्चा उठ जाता है और उसने उस लड़के को वापस दे दिया, उस स्त्री को, उस माता को, और वो चले गया। वो रुका नहीं कि सबको बुलाए नगर में और कहे देखिए आप मैंने क्या किया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था और जब कोई जरूरत आती थी जैसे प्रभु उसको चलाता था, वो परमेश्वर लोगों को आशीषित करता था। पहले तो वो पवित्र व्यक्ति जाना गया और उसके पास एक सेवक था जो कोई काम का नहीं था, निकम्मा था, जो सब संदेश सुनता था, पर उसको एलिशा का आत्मा नहीं प्राप्त हुआ। और अगर आप अगले अध्याय में जाओ आप देखोगे ऐसा क्यों था। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, हम नामान के विषय में पढ़ते हैं जो एक शूरवीर था और एक सेनापति था एक अरामियों की सेना में और उसको कोड था। आप वो कहानी जाते हो कैसे उनके पास एक छोटी सेवक थी और इसराइल से एक लड़की थी जो उनकी दास थी और वो उसके उस स्त्री को कहती है स्वामिनी को, हमारे पास एक भविष्यवक्ता है इसराइल में, वो मेरे इस स्वामी को चंगा कर सकता है। और इसलिए नामान राजा से एक पत्र प्राप्त करता है और जाता है। दूसरा राजा 5वां अध्याय, और वो आगे गया एलिशा के घर, हम पढ़ते हैं 9वां वचन, वो अपने रथों के साथ अपने घोड़ों के साथ बहुत सारा पैसा लेकर और एलिशा एक छोटे से झोपड़ी में था, वो और गेहाजी। और एलिशा और वो उस घर के बाहर खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या तू आकर मुझे चंगा कर सकता है? और एलिशा, देखिए इस परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के मनुष्य को, यह बड़ा शूरवीर दूसरे देश से आया है, बड़ा व्यक्ति। और एलिशा जानता है इस व्यक्ति को नम्र करना जरूरी है। मैं सचमुच एलिशा की सराहना करता हूं, वो परमेश्वर का व्यक्ति था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई बड़े व्यक्ति इस संसार के, वो उसके सामने आकर नहीं पर डरने नहीं वाला था, उसको आकर अभिवादन नहीं करने वाला था, उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करने वाला था। नहीं, उसने आकर नहीं कहा, नामन मैं कितना आदर प्राप्त किया कि तू मेरे पास आया, आज प्रचारों को उतरा। कोई बड़ा व्यक्ति अगर आता है और उसके ऊपर वो बहुत सराहना करते हैं, पर एलिशा ऐसा नहीं था, वो परमेश्वर का व्यक्ति था। मैं कहता हूं आज हमें परमेश्वर के जनों की जरूरत है, आज वो बहुत कम पाए जाते हैं, और इसलिए वो सिर्फ एक संदेश भेजता है। गेहाजी बाहर जाकर कहता है, मेरा स्वामी कहता है यर्दन नदी में जा, 10वां वचन, 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। और नामान गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है एक बड़ा शूरवीर आराम का, उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कोई उससे ऐसा बात करता है। उसको लगा, मुझे लगा वो बाहर आएगा, अपना हाथ हिलाएगा, हाथ फेर कर मुझे ठीक करेगा। और वो कहता है, जाकर मैं यर्दन उस गंदे नदी में डूबू, उससे बेहतर नदी तो दमिश्क में पाई जाती है। और वो क्रोधित था और वो चले गया, वहां से मुड़ गया। और फिर उसका सेवक कहता है, अगर भविष्यवक्ता कहता है कुछ बहान करे तो क्या तू ना करता, ये कितना आसान है, कोशिश करके देख। और वो गया और उसने 7 बार डुबकी लगाई यर्दन नदी में और वो पूरी तरीके से चंगा हो गया। और उसके बाद वो आता है पैसा लेकर। यहां एक नया जन नहीं पाया हुआ अभक्तिहीन व्यक्ति, भक्तिहीन व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर आ रहा है परमेश्वर के सेवक को देने के लिए, जिसने उसको चंगा किया है कोढ़ से। क्या एक चमत्कार है, उस समय कोढ़ चंगा नहीं हो पाता था, कोढ़ों को बाहर रख दिया जाता था छावनी के बाहर। और इस पर एलिशा बाहर आता है और एलिशा उससे बताता है, दूसरा राजा 5:16, देखिए वो कैसा परमेश्वर का जन था, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। ऐसे प्रचारक आज भी है जो कहते हैं, नहीं 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 भाई मैं नहीं चाहता, नहीं 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 चाहता, पर थोड़ा कोई जोर जबरदस्ती कर, नहीं नहीं ले लो, नहीं 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 चाहता, वो जबरदस्ती करते ले लो, ठीक है अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो लेते हैं। एलिशा ऐसा प्रकार का नाटक करने वाला नहीं था, अभिनेता नहीं था, ऐसा दिखावट करना कि वो नम्र है, पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता है। ऐसा लिखा है कि नामान उसके पीछे उसको विवश कर रहा था, 20 बार विवश किया, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा कोई भेंट, एक पैसा नहीं लूंगा तुझसे। और उसका एक कारण था, शायद उसने आमने सामने नहीं कहा, पर वो अगले वचन में आप उसको देख सकते हो। नामान कहता है, एलिशा के पास परख थी, ये व्यक्ति को शारीरिक चंगाई प्राप्त हुई, पर वो प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहता, नहीं वो सिर्फ चमत्कार चाहता है, जैसे आज कई लोग हैं वो चमत्कार चाहते हैं, वो यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते। और एलिशा वो देख पाता था, और नामान ने कहा, ठीक है अगर तू ये नहीं लेगा, कम से कम मैं यहां से थोड़ी मिट्टी ले जाऊं जो मैं अपने घर में रखूं, और इसराइल की मिट्टी थोड़ी ले जाऊं और वहां घुटने टेक कर प्रार्थना करूं, पर एक बात एलिशा, अगर तू मेरी बात माने तो, जब मेरा स्वामी 18 वचन जब उन मूर्ति पूजा के मंदिरों में जाए, दंडवत करे, वो मेरे हाथ का सहारा लेता है, वो नामान को कहता है मेरे साथ आ, और मुझे भी दंडवत करना पड़ता है उस मूर्ति के सामने, नहीं तो वो मुझे निकाल देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, वो मुझे मार डालेगा। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा इस एक बात के लिए। क्या आप सोच सकते हो एक व्यक्ति को प्रभु क्षमा करता है मूर्ति पूजा करने के लिए? परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है पुरानी नियम में, और वहां एलिशा ने परख लिया था, यह व्यक्ति समझौता करने वाला है। वो आशीष चाहता है, वो चमत्कार चाहता है, वो चंगाई चाहता है कोढ़ से, पर एक बार ठीक हो जाता है वो प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहता इसराइल के, वो जाकर उस मूर्ति पूजा की करना चाहता है जो मूर्ति उसको चंगा नहीं कर सका, वो अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है। ऐसे कई लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं कुछ अपने आप के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए, कुछ लाभ फायदा अपने आप के लिए, और एक सही परमेश्वर का सेवक ऐसे लोगों को परखना चाहिए। हम परख करना चाहना, हमें जमना चाहिए 5 मिनट उससे बात करके। अगर आप एक अगुए हो, एल्डर हो, परमेश्वर के सेवक हो, तो आप लोगों को परखना चाहते हो 5 मिनट से बात करके। आपको उनके बीते हुए जीवन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। एलिशा परख सकता था तुरंत, उसने तो उससे मिलने से ही पहले परख लिया था और वो जानता था, इसलिए वो बाहर नहीं आया उससे मिलने। और यहां भी उसने परख लिया ये किस प्रकार का व्यक्ति है। वो समझौता करने वाला था जो अपने आप का लाभ और फायदा और आदर खोज रहा था उसके स्वामी के सामने, और इसलिए कहा मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। कितने परमेश्वर के सेवक है आज जो इनकार कर देंगे किसी व्यक्ति से पैसा लेने के लिए, क्योंकि वो समझौता करने वाले, मैं तेरा पैसा नहीं चाहता, जाकर तेरे पैसे उस मूर्ति को देकर आ, जिस रिमोन को, जिस किसी मूर्ति की तू सेवा करता है, यीशु नहीं चाहता, परमेश्वर वो नहीं चाहता। हम इतना अलग आत्मा देखते हैं आज मसीह जगत में, वो किसी से भी पैसा लेंगे अगर वो पैसा देंगे तो। एक अद्भुत वचन है तीसरा यूहन्ना, वो पहले प्रेरितों के साथ कैसा था उसके विषय में बताता है। यूहन्ना की तीसरी पत्री 7वां वचन ऐसा लिखा है, वे उस नाम के लिए निकले, उसकी सेवा करने के लिए, अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। तीसरा यूहन्ना 1:7 क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, यीशु मसीह के नाम के लिए, अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, जो गैर मसीही है उनसे कुछ नहीं लेते, गैर मसीहों से। दूसरे शब्दों में अगर गैर मसीह आकर उनसे पैसा दे तो वो कहते नहीं, नहीं चाहिए। वैसा एक मसीह कलीसिया की गवाही होनी चाहिए। अगर आपने नया जन्म नहीं पाया भाई बहन, तो आपके पास कोई हक नहीं है ऑफरिंग में पैसा डालने का, हम वो नहीं लेंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें पैसा भेजा है हमारे कलीसिया को, और जब मैं जान गया कि वो गैर मसीह थी, मैं 2 बातें करता था। कभी कभी मैं वो पैसा वापस कर देता था एक गवाही के तौर पर कि सर हम पैसा आपसे नहीं ले सकते क्योंकि आप नया जन्म नहीं पाए हो मसीह के तौर पर। और दूसरे केसेस में प्रभु जैसे चलाता था, मैं बहुत सारी किताबें खरीदता था उतनी रकम के लिए और उनको दे देता था, ताकि उनका एक पैसा भी कलीसिया के काम में ना आए, प्रभु के काम में ना आए। ऐसा है कि उसने किताब खरीदी वो ठीक है, ताकि उसको इंसल्टेड ना लगे। कई बार मुझे प्रेरणा हुई कि मैं उसको बताऊं कि वो नया जन्म पाए, क्योंकि भाई परमेश्वर पैसा नहीं लेता नया जन्म जिसका नहीं हुआ है उससे। और हमें बहुत स्पष्ट होना है पैसे के क्षेत्र में। एलिशा बिल्कुल स्पष्ट था इसमें, विश्वास योग्य था पैसे के क्षेत्र में, इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उसके पास ज्यादा नई वाचा की आत्मा थी। लाखों प्रचारकों से आज शायद 99% प्रचारकों के पास ये आत्मा नहीं है आज, और इसलिए नई वाचा की जितनी बात है वो कोई अर्थ नहीं है उसमें। इस व्यक्ति पास नई वाचा की ज्यादा आत्मा थी कई दूसरे लोगों से। शायद फुल टाइम में आप कोई वर्कर नहीं हो, पैसे के प्रति आपका कैसा रवैया है? एलिशा का रवैया देखिए, और वहां हम देखते हैं नई वाचा का व्यक्ति पुराने नियम में पड़ रहा था, जी रहा था। और देखिए एक फर्क गेहाजी में, गेहाजी एलिशा का सेवक था जो उसके हाथ पर पानी डालता था, जैसे एलिशा एलिया के हाथ धोया करता था। और अगर एलिशा को एलिया से के बाद नबी बना, तो अगला नबी कौन होने वाला था? गेहाजी। पर वो अभिषेक मिलने के बजाय उसको कोड़ मिल गया, अभिषेक के बजाय, एलिशा का अभिषेक के बजाय उसको कोड़ मिल गया। क्या आप जानते हो क्यों? एक ही कारण, वो व्यक्ति पैसे के पीछे पागल था। एक चेतावनी सब प्रचारक और विश्वासियों के लिए आज, जो पैसे के पीछे पागल है, आप जो आपको जो मिलेगा वो है आत्मिक कोड। और हम इसको देखते हैं कैसे गेहाजी, उसने देखा एलिशा ने इसको जाने दिया नामान को, और वो कहता है मेरा स्वामी कैसा मूर्ख है। 20वचन में ये व्यक्ति आकर दे रहा था मुफ्त में और उसने छोड़ दिया, एलिशा ने नहीं लिया। ठीक है एलिशा नहीं लेगा तो मैं जाकर लूंगा अपने आप, और इसलिए वो उसके पीछे भाग कर गया। 20वचन में लिखा है वो भाग कर जाएगा। वो किसके पीछे दौड़ रहा था? पैसा। कई लोग जैसे आज भी दौड़ते हैं, और वो नामान के पीछे दौड़ा और नामा ने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है? और फिर उसको झूठ कहना पड़ता है। जब आप किसी चीज के पीछे हो, जब पैसे के पीछे हो, तो झूठ कहना बहुत आसान है, छोटा झूठ या बड़ा झूठ। ये एक बड़ा झूठ था। उसने कहा दो लोग आए हैं यहां बाइबल स्कूल में दाखिला लेने के लिए, सन्स ऑफ प्रॉफिट बनने के लिए, क्या तू उनके लिए मुझे कुछ कपड़े देगा? हम इन दो लोगों को आज सपोर्ट करना चाहते हैं बाइबल स्कूल में, जैसे आज भी लोग भीख मांगते हैं। वो भीख मांगने के लेटर है, वो प्रेयर लेटर कहते हैं, वो प्रेयर लेटर नहीं, भीख मांगने के लेटर है। कई लोग आपको मिला हो, आपको मिला होगा इंडिया और अफ्रीका में से, प्रेयर लेटर्स, ये सब भीख मांगने के लेटर्स है। पैसा मांगते हैं या पैसे के बारे में कहते हैं, वही हम यहां देखते हैं। हम एक बाइबल स्कूल चला रहे हैं, हमारे पास लोग हैं, उन्हें कपड़ा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। गेहाजी के सेवक, गेहाजी के पीछे चलने वाले, क्या एलिशा ऐसा कुछ करता? नहीं। और जो झूठ वो बताते हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग परमेश्वर में आ रहे, बहुत सारे झूठ। और फिर नामान ने कहा पैसा है, तुझे चांदी चाहिए, मैं दो चांदी दूंगा, दो जोड़े दूंगा, दो जोड़े वस्त्र दूंगा, मैं जितना चाहे उतना दूंगा, और मेरे सेवक ले जाएंगे। और जब वो इस पर्वत के पास आए, एलिशा के घर पर, घर के पास, गेहाजी ने कहा नहीं धन्यवाद, आप जा सकते हो। और वो चुपचाप वो ले लेता है और जाकर उसने छिपा दिया अपने घर में। और फिर वो आकर एलिशा के सामने खड़ा रहता है, जैसे वो बिल्कुल निर्दोष है और जैसे प्रार्थना करके आया मानो वो। और एलिशा ने कहा तू कहां जाकर आता है? और वो और एक झूठ कहता है। जब कभी आप झूठ बोलना शुरू करते हो, आप रुक नहीं सकते एक झूठ कहकर। और वो कहता है मैं कहीं नहीं गया। क्या आपको लगता है आप एलिशा को मूर्ख बना सकते थे? एलिशा देख पाया नामन के थ्रू, और वो गेहाजी को देख पाया, परख पाया। मैं चाहता हूं कि आप यहां कुछ देखो मेरे भाइयों, ये व्यक्ति के पास ज्यादा परख थी। 99% लोग जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है आज भी, अगुए जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, वो मूर्ख हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो सचमुच पूर्ण हृदय शिष्य नहीं है यीशु मसीह के। वो समझौता करते हैं परमेश्वर के सर्व आदर्शों का, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते नहीं जैसे एलिशा चलता था। और एलिशा देख पाया नामान कैसा था और गेहाजी कैसा था। और मैं जानता हूं गेहाजी तूने क्या किया, मेरा हृदय तेरे साथ गया, तू इस रथ के पीछे गया पैसा करने के लिए। क्या ये ऐसा समय है पैसा मिलने के लिए? वही मैं कहता हूं, सब लोग जो भीख मांगते हैं पैसे के लिए, प्रार्थना लेटर्स भेजते हैं और भीख मांगने, क्या यह समय है पैसा प्राप्त करने के? क्या यीशु मसीह ने ऐसे प्रेयर लेटर भेजे पैसे प्राप्त करने के लिए लोगों से, नामान से, आज के नामान से, या उन दिनों के नामानों से, या शिष्यों ने ऐसे बेगिंग लेटर्स भेजे, बेगिंग के पत्र? कई पत्र पढ़ते हैं पौलुस ने लिखे हुए, क्या वो कहते हैं मेरे पास जरूरत है, मेरी सेवकाई की जरूरत है? क्या यीशु पैसा मांगता था लोगों से, सेवकाई के? अलग अलग लोगों ने दिया, यीशु को भी, पौलुस को भी। आप लूक 8 में पढ़ सकते हो, पहले 4 वचनों में, दूसरे कुरिन्थ में 8 और 9 में, फिलिपियों की पत्री 4 में, लोगों ने दिया पौलुस को भी, और उसने वो लिया। पर उन्होंने कभी उसके लिए मांगा नहीं, और वो कभी अविश्वासियों से नहीं लेते थे। इसलिए वो कहता है ठीक है, तो इसके क्या यह समय है पैसा प्राप्त करने के लिए, इन लोगों से, अविश्वासियों से प्राप्त करने के लिए समय है क्या पैसे का? मैं कहता हूं ठीक है गेहाजी, सिर्फ नामान का पैसा ही नहीं, तुझे उसका कोड भी प्राप्त हो गया है। और मेरा यह विश्वास है, ये आज भी सच है, कई लोग जो अविश्वासियों के पैसे के पीछे भागे हैं, उनको आत्मिक कोड भी मिल गया है। आप देखते हो भाई और बहनों, कैसे ये व्यक्ति पुरानी वाचा के, पुराने नियम का मनुष्य एलिशा 100 गुना अधिक था नई वाचा की आत्मा का उसके पास। कई लोगों का आज जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, विशेष करके पैसे के क्षेत्र में, क्या आप आज एलिशा के जैसे परमेश्वर के सेवक को ढूंढ पाओगे? नहीं, थोड़े हैं, पर बहुत कम है जिनके पास एलिशा जैसे परख है, बहुत और भी कम। वही हमारी जरूरत है आज। और इसलिए इन पुराने नियम के लोगों को तुच्छ मत जानो, वो पुरानी वाचा के अंदर थे, पुराने नियम नहीं, ये तो पुरानी वाचा के अंदर थे। हमें शर्म आनी चाहिए जब हम इन लोगों के विषय में पढ़ते हैं कैसे ये जीते थे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हम पढ़ते हैं, ये एक अद्भुत बात है, दूसरा राजा और उसका 13वां अध्याय, 14 वचन, एलिशा बीमार पड़ गया एक ऐसे रोग से जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या परमेश्वर के सेवक बीमार हो सकते हैं? क्या वो बिना बीमारी के मरेंगे? ये अद्भुत सेवक जिसके पास दुगना अभिषेक था एलिया से भी, जिसने दुगने चमत्कार किए एलिया से, उसने मरे हुए से लोगों को उठाया, वो बीमार पड़ता है। उसने प्रार्थना की होगी प्रभु मुझे चंगा कर, पर नहीं, उसका समय आ गया था। प्रभु ने कहा समय आ गया है, तुम चंगे नहीं होगे, तुम मर जाओगे। नई वाचा में आप पढ़ते हो, सबसे महान प्रेरित पौलुस, आप पढ़ते हो उसको दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में, जब वो कहता है शैतान की तरफ से एक कांटा है मेरे शरीर में, कांटा है। परमेश्वर के सबसे बड़े सेवक उनके बीमार होते थे और इतनी तकलीफ हुई पौलुस, मुझे लगता है उसके आंखों में इन्फेक्शन था जो इतना बुरा घृणास्पद था, और इसलिए वो गलातियों की पत्री 4वें अध्याय में कहता है कि तुमने देखा मेरी आंखों ये बीमारी को और तुमने मुझे तुच्छ नहीं जाना, तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे देने के लिए तैयार थे। और इस वजह से मुझे लगता है कि शायद वही वो शरीर का कांटा था पौलुस का, और उसने कहा प्रभु ले ले मुझसे, ये शैतान का दूत है वो कहता है, और प्रभु कहता है नहीं। कारण क्या है? पौलुस तेरा बहुत इस्तेमाल किया गया, तू तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, तूने बाइबल लिखा, तूने कलीसियाओं को स्थापित किया, तेरी जरूरत है कि तू नम्र होने के लिए कुछ चाहिए, और ये इकलौता मार्ग है मैं तुझे नम्र करने के लिए। यीशु मसीह को शरीर में कांटा नहीं चाहिए था, वो उग्र था, पूर्ण हृदय था, वो पूरे आखिरी तक नम्र बन सका था, चमत्कार करके सब कुछ करके, पानी पर चलकर मरेओं को उठाना, 5,000 लोगों को खिलाना, पर नम्र था, घमंड का एक तिनका भी नहीं था, पूरी तरीके से नम्र अंतिम समय तक। पर पौलुस की आवश्यकता थी, और मैं आपको कहना चाहता हूं भाई बहन, आपको और मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए जिस वजह से हम नीचे रहे अपने कई बार एक असफलता संसार में, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर पैसा कमाना। मैं जानता हूं कई सालों में जैसे मैंने अपने आप को पैसा कमाना चाहे, मैंने आर्थिक लॉस देखा है, और परमेश्वर कहता है वो तेरे नम्र करने के लिए, पैसे के प्रेम से छुटकारे के लिए। और मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, दूसरे लोग धन्यवाद देते हैं उनके पैसा कमाने पर, मैं पैसे खोने पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कई बार, धन्यवाद प्रभु, पर तू मेरी जरूरतों के लिए पर्याप्त देता है, वो उतना ही मैं काफी है, बाकी चीजें तू मेरी आत्मा में दिलचस्पी रखता है कि मैं नम्र रहूं, टूटा हुआ रहूं, ये ना सोचो कि मैं कोई हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कि मैं कभी किसी और बात में महिमा नहीं करूं यीशु मसीह के क्रूस छोड़कर, जिसकी वजह से पूरा संसार मेरे लिए क्रूसित है और मैं संसार के लिए क्रूसित हूं। और एलिशा बीमार पड़ा और वो मरने ही वाला था और वो मर गया, और मैं चाहता हूं कि आप देखें, यह अद्भुत है। 20 वचन, एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, और मोआब के लोग हर प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में आक्रमण करते थे और एक व्यक्ति को मिट्टी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि ये मोआबी आ रहे हैं और इस व्यक्ति को एक गड्ढे में फेंक दिया, यहां एक गड्ढा है, यहां खोदा हुआ है, यहां फेंक देंगे, उस मरे हुए व्यक्ति को वहां डाल दिया, और वो एलिशा की कब्र थी। कोई बड़ा वहां मॉन्यूमेंट नहीं था, वहां सिर्फ एक गड्ढा था, और इस व्यक्ति को वहां फेंक दिया, और ज्यादा मिट्टी भी नहीं थी, और एलिशा का शरीर जो था वो थोड़ा ये निकल गया, पूरा मांस निकल गया था, मिट्टी हो गई थी, पर उसकी हड्डी अभी भी वही थी। और ये व्यक्ति, ये मरा हुआ व्यक्ति, उसका शरीर एलिशा की हड्डियों को छूते ही, 21 वचन, और वो जी उठा मरे हुए से और पांव के बल खड़ा हो गया। ज्यादा अभिषेक था एलिशा के मरे हुए हड्डियों में, कई आज नई वाचा के लोगों से भी अधिक। क्या एक चुनौती है एक ऐसा व्यक्ति जो जिया और परमेश्वर के साथ चला। सबसे मुख्य बात जो हम देखते हैं उसके विषय में, एक है बहुत ज्यादा नम्रता, पूरे जीवन भर एक सेवक बनकर एलिया का हाथ धोने वाला जाना जाता था, वो चमत्कार करने के बाद, चमत्कारी उसको नहीं जिसने यर्दन को दुभागा या नमक डालकर पानी चंगा किया, नहीं, एलिया के हाथ धोने वाला यीशु ऐसा ही था। उसके जीवन के अंत में एक ऐसा व्यक्ति जो पानी उसके शिष्यों के पैर धोता था, और यहूदा इस्करियोती के बीच पैर धोए, वो कहता है तुमने मुझे प्रभु और स्वामी कहा है, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारे पैर धो रहा हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया इस बात से जकड़े रहे अपने मन में, यह सच है सारे महान परमेश्वर के लोगों के लिए। इन सारे वर्षों में हम एलिशा के जीवन में भी देखते हैं, जो हाथ धोता था, मैं दूसरा कोई शीर्षक नहीं चाहता, मैं किसी पर पानी डाला है किसी का हाथ धोने के लिए। एक समय था जब 5000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु मसीह को राजा बनाने वाले थे, उसने कहा नहीं, वो भाग गया, क्योंकि वो एक आदर का कोई पोजीशन नहीं चाहता था, वो सेवक होने के लिए चाहता, वो डायरेक्टर चेयरमैन नहीं चाहता था, टाइटल नहीं चाहता था, वो सिर्फ सेवक होना चाहता था। और उसने वो दिखाया लोगों के पैर धोकर, आखिरी में आखिरी दिन उसके इस संसार के जीवन का, पृथ्वी के आखिरी बात जो उसने की क्रूस पर जाने के पहले, शिष्यों के पैर धोना, उसके शिष्यों के पैर धोना, एक अद्भुत उदाहरण। वो एक बात थी एलिशा के विषय में। और दूसरी बात, अभिषेक के पीछे दौड़ना, खोजना, खुश नहीं रहना, गिलगाल से नहीं, बेथल से खुश नहीं रहना, यरीहो से खुश नहीं रहना, मैं यर्दन के द्वारा जाना चाहता हूं और दुगना अभिषेक चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। एक तीव्र इच्छा, यिर्मयाह 29 में बाइबल कहती है और उसका 13 अच्छा है, तुम मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे जब अपने पूर्ण हृदय से तुम मुझे खोजोगे, यिर्मयाह 29:13। वही हम देखते हैं एलिशा में भी, एक खोज, एक तीव्र इच्छा। और तीसरी बात, जो शूनेमी व्यक्ति ने इसको कहा, सिर्फ कैसे वो खाना खाता था, उसका रवैया कैसे था, ये एक पवित्र व्यक्ति है परमेश्वर का, एक प्रचार सुने बिना। ये उदाहरण है जिनके पीछे हमें चलना है, लोगों के हाथ या पैर धोना, हम में से कोई भी ये कर सकता है। उस क्रूस के मार के पीछे जाना, अपने आप को मरना, दूसरों के हमें क्रूसित करते उसको समर्पित होना, वो बेथल से आगे, गिलगाल, बेथल, यरीहो, यर्दन से आगे जाना है, यरीहो से यर्दन जाना है। हां, हम भी उस मार्ग में जा सकते हैं। और पैसे के प्रेम से मुक्त होना, पैसे के पीछे जाने से पीछे मुक्त होना। अगर हम एलिशा से ये पाठ सकते हैं, नई वाचा का व्यक्ति पुराने नियम में जीने वाला, तो ये मेरा विश्वास है हम इसे बहुत लाभ पाएंगे। हम इन सारे उदाहरणों से क्या सीखते हैं, जो मैंने कई बार कहा है, नई वाचा के लोग पुराने नियम के समय जीते थे। आत्मा, नई वाचा की आत्मा, वो सिद्धांत नहीं एक्सप्लेन कर सकते हमारे जैसे, डॉक्टर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, पर उनके अंदर एक रवैया था दूसरों की सेवकाई में, पैसे के प्रति, अपने आप का इनकार करना, और कई ऐसी बातें जो हम देखते हैं ऐसे लोगों में, अय्यूब, अब्राहम, मूसा और अब एलिशा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उनके पद चिन्हों पर चले और उनसे सीखे जितना हम दूसरे ईश्वरीय लोगों से सीखते हैं नई वाचा में। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम सिर्फ ये बातें समझे ना, या सिर्फ उससे उत्साही ना हो जाए किसी संदेश से, पर उससे जकड़े जाए हमारे हृदयों में एक नई वाचा का जीवन जीने के लिए, ताकि नई वाचा का रवैया हो हमारे अंदर हर क्षेत्र में, ताकि हम तेरे उद्देश्य पूरा कर सके, कभी अपने आप का लाभ ना खोजते हुए किसी भी बात में, सिर्फ यीशु मसीह महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।